रिजवी साहब दुनिया के मायानाज वो डॉक्टर हैं और हज़ारहा लोगों के लिए वो आइडियल हैं कि जिस तरह की वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं इंसानियत के लिए यकीनन वो आइडियल हैं। इसी तरह हर इंसान अपने लिए एक अपना वो आइडियल वो मुशख्खस करता है, लेकिन दुनिया भर के तमाम स्काउट्स के अंदर आप जो इमामिया स्काउट्स हैं आपको ये एजाज़ हासिल है, ये फजीलत हासिल है, ये शरफ हासिल है कि आपने अपने जो आइडियल मुंतखब किया है, जिस तरह आप वो बनना चाहते हैं, वो आपने हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की ज़ात मुकद्दसा को चुना है। ये कोई आम बात नहीं है। मैं भी स्काउट्स में रहा हूँ, इसी स्काउटिंग के अंदर अपने ज़िंदगी के कई साल खिदमत में सर्फ किए हैं और आज भी इस बात में फ़ख्र है कि अगर कोई मुझे स्काउट कहे तो मुझे फ़ख्र है, क्योंकि मेरे भी आइडियल मैंने इसी दरसगाह से सीखा कि मेरा भी आइडियल अगर कोई होना चाहिए तो वो हज़रत अब्बास अलमदार होना चाहिए। इसमें बड़ी एक वाज़े सी फ़र्क है, दुनिया के आइडियल वो दुनिया जैसे होते हैं, लेकिन अब्बास अलमदार एक ऐसा आइडियल है कि जिस जैसा कोई बन जाए तो फिर उस जैसा कोई और नहीं बन सकता। और हमने इसीलिए उनको चुना है कि ये जो आज आपका टॉपिक भी है, इफ़ाए इसार, अहद, वफादारी, शुजात, दुनिया की कौन सी ऐसी नेमत या कौन सी ऐसी खसूसियत है जो हज़रत अब्बास में मौजूद ना हो। अगर आप उनके वो इल्म पर बात करें तो उनका इल्म फुकाह का इल्म है, एक आलिम है, एक फकीह है। अगर आप उनकी शुजात पर बात करें तो उनसे बड़ा कोई शुजा नज़र नहीं आता कि जो पूरे के पूरे वो लश्कर पर अकेला भारी पड़ जाए। और आप अगर उनकी वफादारी की बात करें तो उनसे ज़्यादा दुनिया की वफा कहीं नज़र नहीं आती कि मजबूरन दुनिया पूरी दुनिया को भी अगर सर्च कर ले कोई शख्स तो घूमकर उसको हज़रत अब्बास की ज़ात पर आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि ये सिर्फ वफा नहीं बल्कि ये वफाओं का शहनशाह है कि शहनशाहों से ऊपर फिर कुछ नहीं है। इसी तरह अगर हम उनकी फ़ज़ाइल पे बात करें तो मेरा ख़्याल है पूरी रात ख़त्म हो सकती है, उनके फ़ज़ाइल और कमाल ख़त्म नहीं होंगे, हमारी ज़बानें थक जाएंगी लेकिन उनके फ़ज़ाइल की फहरिस्त ख़त्म नहीं होगी। जब उनके इखलास की बात करें तो उनका इखलास दुनिया के तमाम इखलासों के ऊपर भारी है कि आप देखिए ये सारे वाक़यात आपने सुने हुए हैं। मैं वो चीदा चीदा एक तालिब इल्माना निगाह से वो बातें कर रहा हूँ कि क्योंकि आप नौजवान हैं, आप इमामिया स्काउट्स हैं, आपने अपनी आइडियल हज़रत अब्बास अलमदार को रखा है, तो ये सारी खसूसियात जब हमारे आइडियल में हैं तो ये हमारे अंदर भी आनी चाहिए और हमें इनके लिए अपने आप को तैयार भी करना चाहिए। इसी तरह वो तकवा इलाही की बात करें तो अब्बास से आगे कौन होगा। साबित कदमी की बात करें, अगर हम देखें कि कौन साबित कदम है तो अब्बास से ज़्यादा साबित कदम कौन है। करबला के अंदर तमाम जो इंतहाएँ हैं अपनी इंतहा को पहुंच गईं कि हज़रत अब्बास अलमदार हर उनवान से, जितने उनवान मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, हर उनवान से एक उरूज पर पहुंच चुके हैं। वफा का मयार क्या है हमारे सामने है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर इंतहाई मुसीबत के वक्त में उनकी ढाल बने हुए हैं, उनके आगे खड़े हुए हैं, उन पर आने वाली मुश्किलात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जज्बे इसार, कुर्बानी अगर हम बात करें तो अगर आप देखिए मसाइब में भी आप सुनते हैं कि जब पानी तक पहुँचे चाहते तो पानी को पी सकते थे लेकिन ये इसार है, उनको पता है कि मेरे साथी, मेरा लश्कर और मेरा इमाम भी मेरी तरह प्यासा है। ये वो इसार है, ये इसार हमें अपने अंदर भी पैदा करना है। अगर हमने अपना आइडियल हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को रखा है तो बस फिर ये सारी चीज़ें हम सब के अंदर होनी चाहिए। ہمیں تقویٰ میں اسی طرح ہونا چاہیے، اسار میں اسی طرح ہونا چاہیے، ہماری شجاعت ایسی ہونی چاہیے، ہماری وفاداری ایسی ہونی چاہیے، اور کیونکہ آپ اسکاؤٹس ہیں اطاعت اور فرما برداری بھی ویسی ہونی چاہیے۔ اطاعت اور فرما برداری اسکاؤٹس کی روح ہے، جان ہے، اور یہ حضرت عباس سے ہمیں ملی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسا کہہ دیں، حضرت عباس کیا کرتے ہیں، وہ بلا چونچرا اس کو کرتے ہیں۔ شب عاشور کے آپ کے سامنے آپ نے یہ سارے مجالس میں یہ واقعات آپ نے سنے ہیں، میں کوئی آپ کے ساتھ تفصیل سے زیادہ بات نہیں کر رہا، صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ جب جلال میں ہے، جلال میں بھی عباس سے زیادہ کوئی نہیں ہے، جب جناب عباس جب جلال میں ہے تو ممکن ہے کہ اس وقت کوئی بھی بڑا کارنامہ ہو جاتا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اپنی تلوار کو واپس رکھ دو، تو بغیر اف کیے، یہ نہیں کہا کہ کیوں رکھ دوں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، وہ منطق کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اس بحث میں نہیں گئے، کہا کہ یہ امام ہے، یہ لیڈر ہے، یہ آقا ہے، یہ مولا ہے، یہ میرا سرپرست ہے، یہ میرا انچارج ہے، جیسا یہ کہہ رہا ہے مجھے ویسا کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ ساری خصوصیات ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لہذا اس طرح کی محفلوں میں صرف ہم چند لمحے یہ ذکر تو کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ عام زندگی میں بھی اپنی روزانہ کی بنیاد پر اپنے آئیڈیل کے بارے میں ایک ایک اس کی خصوصیت پر تھوڑا تھوڑا سا مطالعہ کریں، جاننے کی کوشش کریں، نہیں جان سکتے تو علماء کرام کے پاس جائیں، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، تاکہ حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت جو مقدسہ ہے ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر جھلک رہی ہو۔ آپ اسکاؤٹ ہیں، جب آپ کو کام دیا جائے، آپ کے لیڈر ہیں اسکاؤٹس کے جو انچارج ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ اطاعت اور فرما برداری حضرت عباس ہونے چاہیے کہ جس طرح عباس نے اطاعت کی، فرما برداری کی، اسی طرح آپ کو اپنے ہر کام کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ یہ آج کی مناسبت سے اس گفتگو کا ایک چھوٹا سا اور پہلا حصہ ہے۔ بس میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں جناب عباس علمدار علیہ السلام کی شان اقدس میں، کہ تمام ان کی زندگی، ان کے بچپن کو دیکھ کر، کہ اگر آپ ان کے وہ بچپن کا بھی مطالعہ کریں اور ان کی نوجوانی کے بارے میں بھی پڑھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ غریبوں کے مددگار ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آگے بڑھ کر خدمت گزار ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عباس علمدار کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ ہوئی ہی کربلا کے واسطے ہے۔ تو یہ وہ آخری جملہ ہے جو میں اس کو خلاصہ سمجھتا ہوں اس گفتگو کا، کہ آپ کی تربیت جو ہوئی بچپن سے، پیدائش سے لے کر کربلا تک، پوری تربیت کا ایک ہی مقصد تھا کہ کربلا کے اندر جا کر اس کو عروج پہ پہنچنا تھا، اور وہ عروج رہتی دنیا تک، قیامت تک ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے، اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اس محفل سے ظاہر ہے کہ فائدہ ایک یہ ہے کہ دو میں نے گفتگو، میں نے کہا تھا کہ دو بات کرنی ہے، ایک تو یہ جناب عباس کی بارے میں تھوڑی سی میں نے ایک اپنی طالب علمانہ انداز میں بات کی ہے، ایک ناقص میری معلومات اور میرا علم ہے۔ دوسری اہم بات جو مسئلہ فلسطین ہے، مسئلہ فلسطین آپ جوانوں کو پتہ ہے کہ آج کل 7 اکتوبر 2023 سے اب تک مسلسل ایک اس وقت ٹاپ کے اوپر ہے، اور ہمیشہ سے امام خمینی نے، رہبر نے، تمام جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں سب نے اس کو کہا ہے کہ یہ نمبر ایک مسئلہ ہے، یہ تمام مسائل سے سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہمیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بس میں آپ کی مناسبت سے ہی چند جملے کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ کو سب پتہ ہے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کو ساری معلومات کا علم ہے کہ اس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کس قدر ظلم ہے، 30,000 کے قریب انسان قتل ہو چکے ہیں، جس کے اندر کوئی 21 سے 22,000 मासूम बच्चे और ख़वातीन हैं। 70-80% लोग जो हैं वो ख़वातीन और मासूम बच्चे हैं जो इस जंग में शहीद हो चुके हैं। 90% जो ये गज़ा का इलाका है वो तहस नहस हो चुका है, घर बर्बाद हो चुके हैं। 15.5 लाख आवाम खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। और पता नहीं कितने जुल्म हैं, मैं आपको गिनवाता जाऊं, शायद 2 घंटे भी मैं आपको ये बता सकता हूं, लेकिन मैं एक जुमले में आपको बताता हूं मेरे नौजवान साथियों, बड़ी तवज्जो के साथ इसको महसूस करें कि वहां पर सर्दी का मौसम है, शदीद सर्दी है, वहां का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, खैमों के अंदर हैं कहीं कहीं पर। और अगर एक जुमले में आपके सामने मैं अर्ज़ करूँ, क्योंकि हमने अब्बास अलमदार का ज़िक्र किया है, तो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के पास, हमारे बच्चों के पास और ख़वातीन के पास एक बूंद पानी भी पीने के लिए नहीं है। अगर इस तमाम जुल्म और मसाइब को एक जुमले में करना चाहें तो मैं ये कहता हूँ कि उनके पास एक गिलास या एक कप ऑफ वाटर भी उनके पास पीने को मौजूद नहीं है। ये जुल्म की एक इंतहा है। छोटे बच्चे हैं मासूम, आपके घरों में भी आपके छोटे बहन भाई होंगे, पीने को दूध नहीं है, शीरख्वार बच्चे हैं, दूध नहीं है, जब पानी नहीं है तो दूध कहाँ से होगा, दूध तो आगे की कैटेगरी है, खाने को रोटी नहीं है। आप अभी सर्दी थी यहाँ पर थोड़े दिन, आपने गर्म लिहाफ के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, रात को सोते हुए आपने लिहाफ ओढ़ा होगा, लेकिन हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के पास ये लिहाफ भी नहीं है, कोई जैकेट पहनने को नहीं है, कोई स्वेटर पहनने को नहीं है, बारिश है, सख्त बारिश है। मैंने ऐसी तस्वीरें मुझे भेजी हैं, वहाँ से वीडियोज़ आई हैं कि मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में सो रहे हैं क्योंकि जगह ही नहीं है, बारिश है, बारिश का पानी खड़ा है, वो कहाँ जाएं, नींद तो सूली पे भी आती है, ये मुहावरा सुना है ना आपने, तो ये बच्चे कीचड़ में सो रहे हैं, ठंडी कीचड़ है, सर्द है, पानी ठंडा है। ये वो दर्द है जो हमें अब्बास हलमदार की सीरत सिखाती है कि हमें इसको महसूस करना चाहिए, हमें इसका एहसास करना चाहिए। जो मेरे भाई ने अभी मुझे दावत देते वक्त रहबर मुअज़्ज़म का कॉल यहाँ पे पढ़ा, जो रहबर ने फरमाया कि हमें अपनी ज़िंदगियों में इसको महसूस करना चाहिए कि ये ज़हूर इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ़ की आमद की कुंजी है। लिहाजा आज की इस गुफ्तगू में बस मैं यही कहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है आप अभी देख रहे हैं, इस्लामी मुज़ाहमत भी अपना काम कर रही है, बस हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, हम ये दर्स भी उन अब्बास के बावफा साथियों से लेते हैं कि जो प्रैक्टिकल ज़ालिम ताकतों के साथ इस वक्त वो लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर तीन आपके सामने जुमले पेश करूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि आप इसको नोट करें, जहन में रखें। यमन फ़लस्तीन पर जिस दिन से ये जंग है, फ़लस्तीन के अंदर जिस दिन से ये मसला है, आपने देखा है कि यमन ने बहर अहमर के अंदर, जिसको वो रेड सी कहा जाता है, वहाँ पर इसराइल से आने और जाने वाले जहाज़ों को रोक दिया है, समंदरी तिजारत उनके लिए बंद कर दी है, जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी तरह 7 अक्टूबर के बाद से जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उनको कहा गया कि आपको मारा जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको नुकसान होगा, आप ये काम कर रहे हैं बहुत बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। तो यमन के जो अंसारुल्लाह हैं उनके सरबरा सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी, उन्होंने कहा कि अगर दुनिया की ताकतें अगर आ जाएं तो वो हमारा क्या नुकसान करेंगी। उनको कहा गया कि बमबारी करेंगी, कत्लो गारत करेंगी, हो सकता है कि आपको भी मार दें। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारी सबसे कीमती चीज़ क्या है। तो उनको कहा, उन्होंने कहा सबसे कीमती चीज़ तो जाहिर है कि हाँ हमारी अपनी जान है, हम खुद हैं, हमारी ज़िंदगी है, वो मारे गए तो सबसे कीमती चीज़ क्या होती है, आपके लिए क्या है सबसे कीमती चीज़। हम सब के लिए जो हमारी सबसे पहली कीमती चीज़ है हमारी ज़िंदगी है। सैयद अब्दुल मलिक ने कहा कि अगर वो हमें मार देंगे तो हमारी कीमती तरीन, हमारा सबसे बड़ा नुकसान हमारी मौत है, हम दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह से डर है। उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ कि अगर इस्तताअत रखने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद, हैसियत रखने के बावजूद, अगर हमने वो काम ना किया जो हमें करना चाहिए, तो अल्लाह यमन पर अज़ाब नाजिल ना कर दे। आप देखिए कि बमबारी कहाँ हो रही है, वो गज़ा में, कत्लेआम फ़लस्तीन में हो रहा है, यमन में अब्बास अलमदार का एक सिपाही वो ये कहता है कि अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम ना दी तो क्या होगा, हमें डर है कि अल्लाह ताला यमन पे अज़ाब नाजिल ना करे कि तुम ये काम कर सकते थे, तुमने नहीं किया, ये तुम्हारा जुर्म है। एक बात है। दूसरी बात, जिस दिन आपने ये ख़बरें सुनी होंगी नौजवानों ने सब ने, कि अमेरिका और बरतानिया की फ़ौजों ने कई दिन के बाद जब जहाज़ों को रोका जाने लगा, जहाज़ों को हिट किया जाने लगा, तो इन्होंने एक अपना बनाया और आकर यमन पे बमबारी की। कल रात को भी की है, अभी कल भी की है, आज भी उन्होंने दोबारा वहाँ मिसाइल मारे हैं। जब इन पर बमबारी हुई तो आप देखिए कि ये एहसास है, ये जज्बा इसार है, ये वफादारी है, ये शुजात है, ये वो तमाम खसूसियतें हैं कि जो हज़रत अब्बास अलमदार की सीरत में मिलती हैं, कि सैयद अब्दुल मलिक ने कहा, खुदाया तेरा शुक्र है गज़ा पे भी बमबारी हो रही है, हम पे भी बमबारी हो रही है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा शुमार भी फ़लस्तीन के साथ होता है। ये वो जज्बा इसार है, ये वो जज्बा शुजात है। ये दो बातें हैं। इससे बड़ी एक बात है, वो तीसरी बात जो हमें सिखाती है, 2021 में ये गज़ा के ऊपर इसराइल ने इसी तरह की एक जंग लगाई थी, रमज़ानुल मुबारक का महीना था, इसराइल ने इसी तरह बमबारी की, इसी तरह दहशतगर्दी की और कई हज़ार लोगों को कत्ल किया। और 2021 में ये यमन कहत में डूबा हुआ था, कहत में, खाने को रोटी जिस तरह फ़लस्तीन में नहीं है आज, हमारे यमन के भाइयों के पास नहीं थी। यमन में हमारे भाई इस कदर मुसीबत में थे कि इनके यहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो नाकिस पैदा हो रहे थे, नाकारा पैदा हो रहे थे, जिस्मों पर गोश्त नहीं था, माएँ भूख से मर रही थी, माओं के पास दूध नहीं था अपने बच्चों को पिलाने के लिए, ये बदतरीन हालत थी। और इन्हीं हालात में यूनाइटेड नेशन की फूड एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की, और यूनाइटेड नेशन की फूड एजेंसी ने कहा, वो रिपोर्ट आज भी उनकी वेबसाइट पर पड़ी हुई है, उन्होंने लिखा कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, दिस इज़ द मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ पर दुनिया चांद पर जा रही है, मरीख पर जा रही है, पता नहीं क्या क्या काम कर रही है, उस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर दुनिया का एक खित्ता है यमन, जहाँ पर लोग पत्ते खाकर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। ये यमन 2021 में है। इसी फूड एजेंसी की रिपोर्ट के दूसरी लाइन में लिखा गया कि इसी मॉडर्न वर्ल्ड के यमन में, जहाँ पर कुछ लोग पत्ते खा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसी यमन के कुछ इलाकों में पत्ते भी मयस्सर नहीं हैं। ये यमन है, ये 2021 का यमन है। और 2021 में क्या होता है, फ़लस्तीन पर हमला हो जाता है, वो गज़ा के ऊपर इसराइल अटैक करता है रमज़ान में, और फिर सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन होसी यौमुल कुद्स के इज्तमा से खिताब करते हुए कहते हैं कि खुदाया अगर आज हमें एक रोटी मिल जाए तो खुदा की कसम आधी हम खाएंगे, आधी अपने फ़लस्तीन के भाइयों को देंगे। ये जज्बा इसार है जो हज़रत अब्बास अलमदार की ज़िंदगी से मिलता है। जो जिसको फॉलो करता है वो सैयद हसन नसरुल्ला बनता है, वो सैयद अब्दुल मलिक बन जाता है, वो याहिया सिनवार बन जाता है, मोहम्मद फैज़ बन जाता है, इस तरह के बहुत सारे कमांडर्स हैं, शहीद अम्माद बन जाता है, और हज़ारों हमारे शोदा हैं जो इस रास्ते पर गामजन हैं, और इंशाल्लाह आप भी जो है वो इसी रास्ते के सिपाही हैं। तो ख़ुलासा इन तीन जुमलों का ये है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, के जितनी आप इस्तेदाद रखते हो, जितनी आपकी ताकत है, उस काम को अंजाम दो। इस ताकत का हिसाब लिया जाएगा, इस जिस्म का हिसाब लिया जाएगा, इस जितना आपको वसाइल हैं, जितनी आपके पास चीज़ें हैं, जितनी आपके पास मालो मता है, जितनी एनर्जी है, जितनी ताकत है, हर चीज़ का हिसाब होगा। हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अपने उस्तादों से सुना कि जब एक गिलास पानी पीते थे, गिलास में पानी लेकर पिया करते थे, ये नीयत करते थे कुर्बतन इलल्लाह कि खुदाया इस पानी से मिलने वाली ताकत तेरी राह में खर्च हो। तो क्या हमारे पास ये फ़िक्र है کیا ہم اس نیت سے یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ یہ ہمیں آج کے اس دن سے ایفائے عہد جو کرنا ہے، جو اثار کرنا ہے، جو سیکھنا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سمیت ہم سب کو یہ سیکھنا ہے، اور یہ نقطہ آج یہ لے کر جائیں کہ جتنی جو استطاعت رکھتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق کام کرے، کیونکہ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اسی طرح عذاب نازل کرے گا جس طرح یمن کے انصار اللہ ڈر رہے ہیں کہ اگر طاقت کے باوجود کوئی کام نہ کیا تو ہم پہ عذاب نازل نہ ہو۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی توفیق، اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام نہ کریں جو ہمیں وہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ خداوند کریم ہم پہ عذاب نازل نہ کرے۔ یہ ایک بات ہے۔ آخری بات کہ بس آج سے عہد کریں، معاشرے کے اندر یہ کلچر عام کریں۔ آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو کیا ہم وہ مسلمان ہیں کہ اگر ہمارے مسلمان بھائی بھوکے ہوں تو کیا ہم اس طرح بھوکے رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے تین وقت کے کھانوں میں سے کم کر کے ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ رمضان میں بھی بالآخر ہم اس پریکٹس کو انجام دیتے ہیں، تو آج سے کوشش کریں اس احساس کو عام کریں، اپنی زندگیوں میں اس احساس کو پھیلائیں، کوشش کریں کہ اس درد کو محسوس کریں، اس کو پرائیورٹی پہ رکھیں، ہر اس کام کو ہر دوسرے کام کے اوپر پرائیورٹی پہ رکھیں۔ اگر کہیں آپ کو دعوت ہے، وہ نظر میں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، کھانے پینے کی دعوت ہے، کوشش کریں کہ کم سے کم اس کو اویل کریں کہ یہ جو دن ہے یہ واقعاً یہ اللہ کے دن چل رہے ہیں، یہ ایام اللہ ہیں، شعبان کے مہینے ہیں، رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھ کے اپنی زندگی کو وہ گزاریں، یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس نیت سے رکھیں کہ ہمارے بھائی فلسطین میں بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں، ہم اس بھوک اور پیاس کو 12 گھنٹے کے لیے محسوس کریں۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ بھوک سے مریں آپ، یہ غلط ہے، لیکن اس درد کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ صرف ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم جب بمباری ہو رہی ہو تو ہم بڑے بڑے جلسے کریں، بڑی بڑی ریلیاں کریں اور پھر بھاگ جائیں، اور پھر جب کوئی بڑا حادثہ اس طرح سے رونما ہو پھر ہم وہ نکل کر آئیں۔ ہماری زندگی میں فلسطین ہونا چاہیے، یہی رہبر معظم نے کہا ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے رہبر کی باتیں ہیں۔ تو بس اسی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درد کو جو ہمارے فلسطینی بھائی مظلوم محسوس کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس درد میں شامل کر، اور ہمیں اس درد کو محسوس کرنے کی توفیق دے، اور عملی طور پر اس میں شامل ہو کر اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے کہ بالآخر یہ سرزمین مقدس ہے، اور یہیں سے حضرت امام حجت کا ظہور بھی جو نشانیوں میں ہے، یہیں سے آپ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، اور دنیا کی جو حاکمیت ہے، جو دنیا کا نظام ہے، وہاں پر عدل قائم کرنا ہے۔ اس دعا کے ساتھ خداوند کریم ہماری اس قلیل سی عبادت کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے شہداء کے جو درجات ہیں ان کو بلند فرمائے، شہداء اسلام، شہداء فلسطین و لبنان، شہداء عراق، شہداء ایران، شہداء یمن، شہداء نائجیریا، شہداء پاکستان، اسی طرح ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں، خاص طور پر ہمارے جو امامیہ اسکاؤٹس کے جو شہید ہیں جن کے نام ہم نے لیے کہ شہید محسن، شہید حسن، اور ہمارے بھی ایک دوست تھے شہید اسد بلوچ، جو جس زمانے میں وہ اے سی ایس تھے، وہ بھی اسی راستے پر، زاہد اسد بلوچ بھائی، وہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی ہمارے ہیں، شہید ڈاکٹر، شہید ناصر صفوی، شہید عارف حسین الحسینی، قائد ملت، تمام شہدا کی بلندی درجات ہو، ان کے لیے آپ ایک مرتبہ فاتحہ پڑھیں اور ان کو اصال ثواب کریں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔